بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز۔ ریڈیو تہران کے سبھی آدرنیہ شروتاؤں کی سیوا میں حسن عباس اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ شروتاؤ، صدا کی بھانتی آج بھی اپنے کارکرم کا آرمبھ ہم پویتر قرآن مجید کی تلاوت اور انواد سے کریں گے۔ آج آپ پویتر قرآن مجید کے سورہ معارج کی 19 سے لے کر 29 آیتوں تک کی تلاوت اور انواد سنیں گے۔ قاری ہیں شری عبد الباسط۔
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے۔ نسندیہ منش بڑا لوبھی ہے، جب اسے پیڑا اور کشتی ہوتی ہے تو چیخ پکار کرنے لگتا ہے، اور جب اسے دھن سمپتی مل جاتی ہے تو کنجوس بن جاتا ہے، سوائے ان واستوک نمازیوں کے کہ جو سدیو نماز میں اپنی آیو بتاتے ہیں، اور جن کی سمپتی میں ایک اسپشٹ ادھیکار نردھارت ہوتا ہے۔ مانگنے والے دردروں اور نہ مانگنے والے ونچتوں کے لیے، اور جو لوگ پرلے کے دن کی پشٹی کرنے والے ہیں، اور جو اپنے پالنہار کے دنڈ سے ڈرنے والے ہیں، कि उनके पालनहार के दंड से कोई भी बचने वाला नहीं है और जो अपने आप को व्याभिचार से बचाते हैं।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। आज शनिवार है, शहरवार की 5, मुहर्रम की 29 और अगस्त की 27 तारीख। श्रोताओ, हमारा ये कार्यक्रम आप शॉर्ट वेव में 25 मीटर बैंड बराबर 11,860 किलोहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं। हमें आशा है कि हमारा आज का प्रसारण भी आपको अवश्य पसंद आएगा। पत्र व्यवहार के लिए हमारे पते नोट कर लें। हमारा ईमेल एड्रेस है hindi@ws.irib.ir, जबकि ताज़ा समाचारों से अवगत होने के लिए हमारी वेबसाइट का पता है parstoday.com/hi और व्हाट्सएप पर संपर्क के लिए हमारा नंबर है 00989035065492। श्रोताओ, हमारे आज के कार्यक्रम की रूपरेखा नोट कर लें। सदा की भांति आप सबसे पहले देश विदेश के समाचार सुनेंगे, उसके पश्चात राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम सुनेंगे, उसके पश्चात आप सुनेंगे साप्ताहिक कार्यक्रम उज्ज्वल भविष्य और सभा का अंतिम और साप्ताहिक कार्यक्रम होगा ईरान भ्रमण। श्रोताओ, ये तो थी हमारी आज के कार्यक्रम की रूपरेखा और अब आप कुछ ही क्षणों में रेडियो तेहरान से समाचार सुनेंगे। और अब आप मरियम मेहरदादी और मोहम्मद मेहदी से समाचार सुनिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि आज दुश्मन हमारे बेहतरीन लोगों को दूसरे देशों में ले जाना चाहता है। अमरीकी थिंक टैंक ने कहा है कि परमाणु समझौते को जीवित करने के मार्ग की असली रुकावट अमरीका है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि यूक्रेन पर हमला जारी रहेगा। चीन ने कहा है कि ताइवान संकट का असली जिम्मेदार अमेरिका है। और अब आप विस्तार से समाचार सुनिए।
इस्लामी गणतंत्र ईरान के राष्ट्रपति का कहना है कि अतीत में दुश्मन हमारे प्राकृतिक भंडारों को लूट मार करता था, जबकि आज आइडेंटिटी, इलेक्ट्रॉनिक, साइबर और सॉफ्टवेयर वार में हमारे बेहतरीन, योग्य और सक्षम लोगों को दूसरे देशों में ले जाना चाहता है। इस्लामी गणतंत्र ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी ने विभिन्न देशी और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में मेडल जीतने वाले छात्रों, उनके परिजनों, टीचर्स और इस क्षेत्र में सक्रिय भूमिका अदा करने वाले प्रोफेसरों से मुलाकात में प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि इस्लामी गणतंत्र ईरान का झंडा ऊंचा करना और किसी भी क्षेत्र में देश का सिर गर्व से ऊंचा करना समाज के लिए बहुत ही आनंदमयी, प्रतिष्ठित और सुखद होता है। राष्ट्रपति का कहना था कि देश के विकास और प्रगति में बुद्धिजीवियों और मेधावियों की भूमिका मुख्य होती है और सरकार ये मजबूत इरादा रखती है कि अपने मेधावियों की टीम विकसित करे, इसलिए कि मेधावी लोग देश के स्थायी विकास की मुख्य पूंजी हैं। राष्ट्रपति रईसी का कहना था कि दुश्मन नहीं चाहता कि हमारे पास अच्छी क्षमताओं और योग्यताओं से संपन्न श्रम बल हो जो पैदावार बढ़ाने, वैज्ञानिक क्षेत्र में प्रगति और रोजगार के अवसर प्रदान करने वाली संस्थाओं में हमारी मदद करे, ताकि हमारा दायित्व है लेकिन हमारा दायित्व है कि इसके मुकाबले में मजबूत इरादे और मजबूत इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करें ताकि दुश्मन पीछे हटने पर बाध्य हो जाए।
ईरानी सेना के एयरोस्पेस फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अली रजा सवाई फर्द ने कहा कि ड्रोन अभ्यास ने सफलतापूर्वक ऐसे ऑपरेशन पूरे कर लिए हैं जो दुनिया में अभूतपूर्व हैं। प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामिक गणतंत्र ईरान की सेना के वायु रक्षा बल के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अली रजा सवाई फर्द ने शनिवार को एक बयान जारी करके वायुसेना द्वारा अंजाम दिए गए सफलतापूर्वक ड्रोन अभ्यास पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमारे आधुनिक ड्रोन विमानों ने ऐसे ऑपरेशनों को कामयाबी के साथ पूरा किया है कि जो दुनिया में अभूतपूर्व है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान की रक्षा शक्ति अब इस स्तर पर पहुंच गई है कि दुनिया की कोई ताकत देश पर हमला करने की कल्पना भी नहीं कर सकती। ब्रिगेडियर जनरल अली रजा सवाई फर्द ने अपने बयान में कहा कि युवाओं के साहस और दृढ़ संकल्प के कारण ईरान आज इस मुकाम तक पहुंचा है। ईरान का सैन्य ड्रोन अभ्यास 1401 पिछले गुरुवार को कामयाबी के साथ समाप्त हो गया। इस अभ्यास में सेना और वायु रक्षा बेस के खातेमुल अंबिया की 4 प्रमुख इकाइयों ने भाग लिया। अभ्यास के दौरान ड्रोन ने दुश्मन के कल्पित लक्ष्यों पर सफलतापूर्वक हमला किया। इस अभ्यास में सभी प्रकार के दुश्मन के ठिकानों को विभिन्न तरीकों से निशाना बनाया जाना था, जिसको नवीनतम तकनीकों से तैयार किए गए ड्रोन विमानों ने कामयाबी के साथ अपने लक्ष्यों को निशाना बनाया।
ये समाचार आप रेडियो तेहरान से सुन रहे हैं। एक अमेरिकी थिंक टैंक ने कहा है कि परमाणु समझौते को जीवित करने के मार्ग की असली रुकावट अमेरिका है। डेमोक्रेटिक पार्टी से निकट अमेरिकी थिंक टैंक ने अपने एक विश्लेषण में कहा है कि परमाणु समझौते की वापसी के मार्ग की रुकावट ईरान नहीं बल्कि अमेरिका है। अमेरिकी थिंक टैंक CNS ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा है कि परमाणु समझौते में वापसी के मार्ग की सबसे बड़ी रुकावट ईरान नहीं बल्कि अमेरिकी कांग्रेस है। समाचार एजेंसी तस्नीम की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी थिंक टैंक की रिपोर्ट में आया है कि जब से जो बाइडेन ने सत्ता की बागडोर संभाली है, तब से अमेरिकी सरकार परमाणु समझौते में वापसी के लिए प्रयास कर रही है। ज्ञात रहे कि 8 मई वर्ष 2018 को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक पक्षीय रूप से परमाणु समझौते से निकल गए थे और उनके इस कार्य पर देश के भीतर और बाहर उनकी काफी आलोचना हुई थी।
रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि यूक्रेन पर हमला जारी रहेगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी सहयोगी और पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि यूक्रेन अपने सैन्य अभियान को मास्को नहीं रोकेगा, भले ही कीव नाटो में शामिल होने की अपनी इच्छा को छोड़ने की औपचारिक रूप से घोषणा कर दे। पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव अब रूस की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने एक फ्रांसीसी टेलीविजन से इंटरव्यू में कहा कि रूस कुछ शर्तों के साथ यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की के साथ बातचीत करने के लिए तैयार था। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार फरवरी में शुरू किए गए हमले से पहले ही मॉस्को ने साफ कर दिया था कि यूक्रेन को नाटो की सदस्यता उसे किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है। मेदवेदेव ने कहा कि नाटो में अपनी भागीदारी की इच्छा को छोड़ देना अब महत्वपूर्ण है, लेकिन शांति कायम करने के लिए यह पहले से ही अपर्याप्त है। उन्होंने कहा कि रूस तब तक अपना सैन्य अभियान जारी रखेगा जब तक कि उसके लक्ष्य हासिल नहीं हो जाते। पुतिन का कहना है कि वो यूक्रेन को फासीवादी शासन से मुक्त कराना चाहते हैं, जबकि कीव और पश्चिमी देशों का कहना है कि ये एक जंग के लिए आधारहीन बहाना है।
चीनी प्रतिरक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि ताइवान संकट का जनक अमेरिका है और अपनी भड़काऊ कार्रवाइयों से उसने चीन को क्रोधित कर दिया है। चीन ने हमेशा कहा है कि ताइवान उसका हिस्सा है। चीन ने पिछले सप्ताह ऐलान किया था कि ताइवान के पास उसने जो सैन्य अभ्यास किया है उसका लक्ष्य केवल चेतावनी देनी थी। समाचार एजेंसी फारस की रिपोर्ट के अनुसार चीनी प्रतिरक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता तान केफी ने कहा कि अमेरिका इस समय ताइवान संकट के असली कारण में परिवर्तित हो गया है और जरूरी है कि वॉशिंगटन अपनी गलतियों की सुधार करे। चीनी प्रतिरक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने ताइवान के निकट सैन्य अभ्यास के आयोजन को चीनी संप्रभुता का अधिकार बताया और कहा कि अमेरिका सहित कुछ पश्चिमी देशों द्वारा इस सैन्य अभ्यास की आलोचना पूरी तरह वास्तविकता के अनदेखी करना है। इसी प्रकार उन्होंने कहा कि चीन ने जो सैन्य अभ्यास किया वास्तव में वो संकट उत्पन्न करने वालों के लिए चेतावनी हो गया। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो उसका सैनिक जवाब दिया जाएगा, और बाइडेन का ये जवाब व बयान चीनी क्रोध का कारण बना था।
संयुक्त अरब इमारात यमन के सख्तरी क्षेत्र में इस देश की महिलाओं व लड़कियों की भर्ती कर रहा है और अबूजबी में उनका प्रशिक्षण इसराइली अफसर सहित विभिन्न अफसर कर रहे हैं। प्राप्त समाचारों के अनुसार अरब इमारात जिन यमनी महिलाओं व लड़कियों की भर्ती कर रहा है उनके लिए शर्त यह है कि उनकी उम्र 15 से 22 साल होनी चाहिए। यमन के अलमसीरा टीवी चैनल की रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त अरब इमारात का यह कार्य यमनियों के क्रोध का कारण बना है। इसी प्रकार अलमसीरा की रिपोर्ट में आया है कि इससे पहले भी अरब इमारात यमनी महिलाओं की भर्ती कर चुका है और ये तीसरी बार है जब संयुक्त अरब इमारात ये कार्य अंजाम दे रहा है और इसराइल और विभिन्न देशों के अफसर उनका सैन्य व गैर सैन्य प्रशिक्षण कर रहे हैं।
एक अमेरिकी चैनल ने लेबनान के इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन हिजबुल्लाह की ताकत के किस्से बयान किए हैं। सीएनएन न्यूज नेटवर्क की वेबसाइट ने हिजबुल्लाह की ओर इशारा करते हुए लिखा है कि हालांकि ये अलग थलग पड़ गया है लेकिन ये पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। फारस समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार सीएनएन समाचार वेबसाइट ने एक विश्लेषण किया है कि लेबनान में हिजबुल्लाह के गठन के 40 साल बीत चुके हैं। यद्यपि ये गुट अलग थलग हो गया है लेकिन पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली है। सीएनएन ने अपने लेख में लिखा है कि लेबनान में इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन हिजबुल्लाह ने सोमवार को दक्षिणी लेबनान में अपनी उपस्थिति की 40वीं वर्षगांठ मनाई और युद्ध में मारे गए मुजाहिदीन को दुनिया के सामने पेश किया। अमेरिकी चैनल ने लिखा है कि हालिया दिनों में लेबनानी शिया समूह द्वारा खुद को ईरान समर्थित अर्ध सैनिक संगठन के रूप में पेश करने का प्रयास किया जो राजनीति के मैदान में एक अहम क्षेत्रीय खिलाड़ी बनकर सामने उभरा है। सीएनएन इस्तेमाल लिखता है कि 40 साल बाद हिजबुल्लाह सैन्य रूप से पहले से कहीं अधिक मजबूत है जबकि विश्व स्तर पर और अधिक अलग थलग भी होता जा रहा है।
इसराइली सैनिकों ने गैर कानूनी बस्तियों के निर्माण के विरुद्ध प्रदर्शन करने वाले फिलिस्तीनियों पर हमला करके 32 फिलिस्तीनियों को घायल कर दिया। इरना की रिपोर्ट के अनुसार वेस्ट बैंक के शहर किलकेलिया के पूर्वी उपनगरीय क्षेत्र कफर कंदुमा बैत दजन और बीता की कॉलोनियों में इसराइली सैनिकों की फायरिंग और उनके साथ होने वाली झड़पों में 32 फिलिस्तीनी घायल हो गए। इस खबर की पुष्टि फिलिस्तीन की रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने भी की है। फिलिस्तीन की रेड क्रिसेंट सोसाइटी का कहना है कि 6 फिलिस्तीनी जायनी सैनिकों की सीधी फायरिंग से घायल हो गए जबकि 23 फिलिस्तीनियों की आंसू गैस के शेल दागे जाने के कारण हालत बिगड़ गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इसके अलावा 3 फिलिस्तीनियों के घायल होने का कारण नहीं बताया गया है।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता सहित सभी पदों से त्याग पत्र दे दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजे 5 पृष्ठ के त्याग पत्र में आजाद ने कहा कि वो भारी मन से ये कदम उठा रही हैं। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से पहले कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकाली जानी चाहिए थी। आजाद ने कहा कि पार्टी में किसी भी स्तर पर चुनाव संपन्न नहीं हुए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि कांग्रेस लड़ने की अपनी इच्छा शक्ति और क्षमता खो चुकी है।
पाकिस्तान में आजकल भारी वर्षा हो रही जिसकी वजह से खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कई जिलों में आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। आपदा प्रबंधन अधिकारियों ने बताया कि स्वाद नदी के उफान पर पहुंचने के संबंध में आगाह किए जाने के बाद ये निर्णय लिया गया। पाकिस्तान में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ में अब तक 343 बच्चों समेत 937 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि कम से कम 3 करोड़ लोग बेघर होने की सूचना है। और इसी के साथ रेडियो थेरान से समाचार समाप्त हुए।
श्रोताओ, राजनीतिक चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं अहमद अब्बास।
राजनीतिक चर्चा।
कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा में आज हम बात करेंगे कश्मीर के लिए चुनाव आयोग के एक बयान से उत्पन्न होने वाले विवाद की। भारत और रूस ने यह फैसला किया है कि वे आपसी व्यापार में डॉलर का इस्तेमाल खत्म करेंगे। ये विषय भी कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा में शामिल रहेगा। लेबनान में राजनीतिक संकट यथावत बना हुआ है और इसमें काफी हद तक अमरीका का हाथ है। ये विषय भी राजनीतिक चर्चा में शामिल रहेगा। तो चर्चा के विषय यही हैं। आरंभ करते हैं कश्मीर के हालात से। भारत नियंत्रित कश्मीर में चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से दिए गए बयान पर राजनीति तेज हो गई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग द्वारा बताए गए नियमों को सही ठहराने की कोशिश कर रही है। ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता सिप्ते मोहम्मद हसन।
भाजपा ने श्रीनगर में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि जम्मू कश्मीर की राजनीतिक पार्टियां चुनाव आयोग के उस वक्तव्य पर राजनीति कर रहे हैं जो हर लिहाज से सही है। श्रीनगर में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि चाहे भारत की कोई भी राज्य हो, चुनाव आयोग का एक ही कानून उन पर लागू है, परंतु कश्मीर के कई दल इस पर राजनीति करना चाहते हैं जिसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का विशेष अख्तियार खत्म कर दिया गया है, अब इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और जो अधिकार भारत के अन्य राज्य के लोगों का है वही जम्मू कश्मीर के लोगों का है, उसमें कोई भी कमी या ज्यादती नहीं होगी। उन्होंने कहा कि तमाम नागरिक बराबर हैं और चुनाव आयोग ने जो वक्तव्य दिया है वो बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा कि अगर यहाँ पर कोई भी रिहाइश पजीर है उसे मत देने का हक बराबर है। उन्होंने कहा कि अब इस पर राजनीति करके यहाँ के लोगों को गुमराह करने का जो प्रयास हो रहा है उसे सफल होने नहीं दिया जाएगा। इस अवसर पर उन्होंने कहा,
मीटिंग कन्वीन की जाती है जिसमें गुपकार अलायंस के नए पार्टनर भी बन गए, नए नए लोग जो है वो सामने आ रहे हैं और ये कहने की कोशिश की जा रही है कि पता नहीं कौन सी पॉपुलेशन जो है उसको शिफ्ट किया जाएगा जम्मू कश्मीर के बीच में वोट डालने के लिए। कानून को पढ़ा नहीं और बयानबाजी शुरू हो गई। कोई नई पॉपुलेशन जो है वो मूव इन नहीं होगी जम्मू कश्मीर में, कोई नए लोग जो है वो वोटर बनने के लिए जम्मू कश्मीर में नहीं आएंगे। जम्मू कश्मीर में वोटिंग का राइट उन्हीं को होगा जो ऑर्डिनरी रेजिडेंस की डेफिनेशन में फॉल करते हैं, और इसमें कोई बड़ी ज्यादा चेंजेस आ जाए ऐसी भी बात नहीं है।
इधर जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा है कि उन्होंने दक्षिणी कश्मीर के विभिन्न क्षेत्रों में छापामार कार्रवाई के दौरान अलगाववादी छापामारों के कई ठिकानों को नष्ट किया है, जबकि उत्तरी कश्मीर के सोपोर में उन्होंने कहा है कि लश्कर ए तैयबा के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है जिनके नियंत्रण से असला और गोला बारूद बरामद करने का भी दावा किया गया है, जबकि बताया गया है कि उत्तरी कश्मीर के ही उड़ी में एक घुसपैठ की प्रयास हुई जिसे असफल बना दिया गया। इसमें 3 अलगाववादी छापामार भी हताहत हुए जिनके नियंत्रण से भारी मात्रा में असला और गोला बारूद बरामद किया गया जिसमें आधुनिक हथियार भी शामिल हैं। सिप्ती मोहम्मद हसन, रेडियो तेहरान, श्रीनगर।
भारत और रूस ने आपसी व्यापार में डॉलर का इस्तेमाल खत्म करने का फैसला किया है। जायजा पेश कर रहे हैं कायम रिजवी।
अपने द्विपक्षीय व्यापार के लेन देन में भारत और रूस दोनों ने डॉलर को हटा दिया है। ब्रिक्स के प्रमुख ने घोषणा की है कि भारत और रूस को परस्पर व्यापार में अब डॉलर की जरूरत नहीं है। पूर्णिमा आनंद के अनुसार नई दिल्ली और मॉस्को ने लेन देन के लिए अपनी मुद्राओं के प्रयोग को ही वरीयता दी है। उन्होंने कहा कि व्यापारिक लेन देन में हमने रूबल और रुपये के प्रयोग को शुरू कर दिया है, ऐसे में हमको आपसी व्यापार में अमरीकी डॉलर की अब कोई जरूरत बाकी नहीं बची है। रूस और चीन के बीच व्यापार में भी डॉलर को हटाकर रूबल और युआन के इस्तेमाल की बात चल रही है। अगस्त सन 2022 के आरंभ में मिलने वाले सीमा शुल्क के आंकड़े ये बताते हैं कि भारत की बहुत सी कंपनियां अपने डॉलरों को एशियन मुद्रा विशेषकर युआन में बदल रही हैं। ये कंपनियां अन्य मुद्राओं का प्रयोग करके मॉस्को पर लगे प्रतिबंधों से स्वयं को अधिक से अधिक सुरक्षित रखना चाहती हैं। भारत की बहुत सी स्टील और सीमेंट की कंपनियां रूस से कोयला खरीदने के लिए दिरहम, युआन, हांगकांग के डॉलर और यूरो में व्यापार कर रही हैं। भारत ने यूक्रेन युद्ध के आरंभ होने के बाद से रूस से तेल और पत्थर का कोयला की खरीद में उल्लेखनीय वृद्धि कर दी है। इसी विषय ने रूस को पश्चिमी प्रतिबंधों के नकारात्मक प्रभावों से किसी सीमा तक सुरक्षित कर रखा है। इस संदर्भ में पूर्णिमा आनंद कहते हैं कि नई दिल्ली यूक्रेन युद्ध में स्वयं को तटस्थ मानती है और प्रतिबंधों के दबावों के बावजूद जब भी जरूरत होगी मॉस्को के साथ सहयोग किया जाएगा। रूस की सरकार ने इस देश की केंद्रीय बैंक, सरकारी पूंजी निवेश कोष, विभिन्न बैंकों और कई व्यापारियों को डॉलर में व्यापार करने से रोक दिया है। यूक्रेन युद्ध के कारण पश्चिम ने रूस के विरुद्ध कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए। इन प्रतिबंधों के लगाए जाने के बाद से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार के लिए मुद्रा के रूप में डॉलर के विकल्प के रूप में किसी दूसरी मुद्रा को अपनाने की बात सामने आई है। सन 2014 में क्रीमिया के रूसी संघ में विलय के विषय पर अमरीका ने रूस के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे। इन प्रतिबंधों के बाद उन रूसी कंपनियों के लिए बहुत सी समस्याएं आने लगी थीं जो डॉलर में व्यापार किया करती थीं। उसी समय से रूस ने अमरीकी मुद्रा डॉलर से अपनी निर्भरता कम करनी शुरू कर दी थी। रूस की केंद्रीय बैंक ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर को कम करके उसके स्थान पर सोना, युआन और यूरो को बढ़ा दिया है। अब रूस ने विदेशी लेन देन में डॉलर को हटाकर अपनी राष्ट्रीय मुद्रा में व्यापार करने का फैसला कर लिया है।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा।
लेबनान में राजनैतिक गतिरोध बना हुआ है और सरकार का गठन नहीं हो पा रहा है। हालात का जायजा पेश कर रहे हैं अख्तर अब्बास।
लेबनान के प्रधानमंत्री के रूप में नजीब मिकाती को पेश किए हुए 2 महीने से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन इसके बावजूद इस देश में राजनीतिक स्थिति अभी भी अनिश्चित है, विशेषकर कैबिनेट गठन के मुद्दे पर गतिरोध यथावत जारी है। लेबनान में राजनीतिक गतिरोध हालिया महीनों से संबंधित नहीं है, लेकिन इस स्थिति को लगभग 3 साल समय हो चुका है। ये अक्टूबर 2019 की बात है जब साद हरीरी की सरकार के विरुद्ध लोग सड़कों पर उतरे और उन्होंने सरकार से त्यागपत्र देने की मांग की। प्रदर्शनों के तेज होने के साथ ही साद हरीरी ने लेबनान के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया ताकि वो इस देश की गंभीर चुनौतियों के लिए जिम्मेदार न बन सकें। उन्होंने पद से त्यागपत्र तो दे दिया, लेकिन देश आर्थिक क्षेत्र में धरातल में पहुंच गया और आंतरिक रूप से देश 2 हिस्सों में विभाजित हो गया। इस इस्तीफे के बाद लेबनान ने बहुत कम ही खुशी के दिन देखे। हसन दयाब की कैबिनेट ने साद हरीरी की कैबिनेट की जगह ले ली, लेकिन बार बार खड़ी की जा रही समस्याओं और चुनौतियों के बाद विशेषकर साद हरीरी के समर्थकों ने मानो उनका हाथ ही बांध दिया हो और उन्हें काम ही नहीं करने दे रहे हैं। 4 अगस्त को बैरूत बंदरगाह में विस्फोट ने, जिसमें 6,000 से अधिक लोग मारे गए और घायल हुए ने, इससे कैबिनेट को बहुत बड़ा झटका दिया और लिबनान एक बार फिर आंतरिक सरकार के दौर में पहुंच गया। अक्टूबर 2021 में नए अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में नजीब मिकाती की नियुक्ति तक हसन दैयाब की अंतरिम सरकार काम करती रही। मिकाती मई में लिबनान में नए संसदीय चुनाव आयोजित कराने में कामयाब रहे और बाद में उन्हें नए प्रधानमंत्री के रूप में नामित भी किया गया, लेकिन कई महीने बीत चुके हैं और नई सरकार अभी तक नहीं बनी। लिबनान का राजनीतिक माहौल ऐसा है कि जाहिरी तौर पर 14 मार्च धड़े के करीब की राजनीतिक धाराएं नई कैबिनेट नहीं बनाना चाहती हैं, क्योंकि वे मिशेलॉन के राष्ट्रपति पद को खत्म करने और नए राष्ट्रपति के साथ नया कैबिनेट बनाने की कोशिश कर रही हैं। राष्ट्रपति मिशेलॉन का राष्ट्रपति कार्यकाल अक्टूबर के महीने में खत्म हो जाएगा। ऐसा लगता है कि नई लेबनानी कैबिनेट के गठन की मुख्य समस्या राजनीतिक धाराओं के मंत्रियों के हित हैं। ऊर्जा और गृह मंत्रालय जैसे मंत्रालय उन विवादित मंत्रालयों में से हैं जिन्हें हर धड़ा अपने हाथ में लेने की कोशिश करता है। नई कैबिनेट बनाने की चुनौती ये है कि इससे पहले साद हरीरी भी करीब एक साल तक कैबिनेट बनाने में नाकाम रहे और उनकी जगह मिकाती ने ले ली। इसीलिए मंत्रिमंडल के गठन में गतिरोध का जारी रहना दर्शाता है कि लिबनान में खाई बढ़ती जा रही है। अहम बात यह है कि लिबनान छोटा देश होने के बावजूद पश्चिम एशियाई क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण देश है, इसीलिए इस देश में विदेशी हस्तक्षेप की मात्रा भी उच्च स्तर पर है। अमरीका और सऊदी अरब उन देशों में शामिल हैं जो कैबिनेट के गठन सहित लिबनान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते हैं, जबकि लिबनान अपनी सबसे खराब आर्थिक स्थिति का सामना कर रहा है और अमरीका इस देश के खिलाफ प्रतिबंधों को खत्म करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसका ये मानना है कि प्रतिबंध हिजबुल्ला के खिलाफ एक हथकंडा है।
और इसी के साथ राजनीतिक चर्चा का कार्यक्रम समाप्त होता है।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। श्रोताओ, अब प्रस्तुत है हमारी सभा का साप्ताहिक कार्यक्रम उज्ज्वल भविष्य।
उज्ज्वल भविष्य।
दोस्तों, कार्यक्रम उज्ज्वल भविष्य की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित है मरियम मेहरदादी और मोहम्मद मेहदी का सलाम स्वीकार कीजिए।
दोस्तों, आज भी हम इस्लामी क्रांति की सफलता के बाद करीब हर क्षेत्र में ईरानी महिलाओं की सफल भूमिका की चर्चा करेंगे। पिछले कार्यक्रम में हमने बताया था कि ईरानी महिलाओं ने न केवल इस्लामी क्रांति के आंदोलन में बल्कि क्रांति की सफलता के बाद उसकी जड़ों को मजबूत बनाने और उसकी रक्षा करने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस्लामी क्रांति ने राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को न सिर्फ एक अधिकार के रूप में बल्कि एक जिम्मेदारी के रूप में स्वीकार किया है। स्वर्गीय इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने इस्लाम के शुरुआती आदर्शों का हवाला देकर महिलाओं से सभी क्षेत्रों में सक्रिय होने की अपील की। इस प्रकार इस्लामी क्रांति के बाद महिलाओं की राजनीति सहित विभिन्न क्षेत्रों में भागीदारी बढ़ी।
अमरीकी लेखक डॉक्टर पॉल एस्परेमैन लिखते हैं, मैंने ईरान की अपनी यात्राओं के दौरान समाज में ईरानी महिलाओं को सक्रिय देखा। आज शिक्षा के क्षेत्र में आम ईरानी महिलाओं के लिए किसी तरह की कोई रुकावट नहीं है। ईरानी यूनिवर्सिटियों में ज्यादातर फैकल्टी महिलाएं हैं। 2012 की यूनेस्को की रिपोर्ट के मुताबिक शिक्षा में लैंगिक समानता तक पहुँच के मामले में ईरान दुनिया के शीर्ष 6 देशों में से एक है। 1978 में केवल 35% ईरानी महिलाएं साक्षर थी, जबकि आज लगभग 90% साक्षर हैं। छात्राओं की संख्या 1976 में 2 मिलियन से बढ़कर 2016 में 6 मिलियन हो गई है। महिला कॉलेज स्नातकों की संख्या 1976 में 6% से बढ़कर 44% हो गई है। धार्मिक केंद्रों में महिला छात्राओं की संख्या क्रांति से पहले कुछ दर्जन से बढ़कर 80,000 छात्राओं तक पहुंच गई है।
प्रेस और मास मीडिया में पत्रकारों और लेखकों की एक बड़ी संख्या महिलाओं की है। शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं का वैज्ञानिक स्तर उस बिंदु पर पहुंच गया जहां बालिका उच्च विद्यालय में शिक्षा के लिए महिला शिक्षकों का उपयोग किया जाता है और प्रवेश परीक्षा में लड़कियों की सफलता शिक्षा में महिलाओं की गुणात्मक वृद्धि को दर्शाता है। इस्लामिक क्रांति से पहले शिक्षा क्षेत्र में 125,000 कर्मचारी महिलाएं थीं, लेकिन अब शिक्षा में कार्यरत लोगों में से आधी महिलाएं हैं। विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा में भाग लेने वालों में लगभग 60% लड़कियां हैं। विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा में लड़कियों की व्यापक भागीदारी ईरानी लड़कियों के लिए समाज के सभी क्षेत्र में एक उज्ज्वल भविष्य का संकेत देती है।
खेल के क्षेत्र में भी महिलाओं ने क्रांति उत्पन्न कर दी है। 1978 में महिलाएं खेल के केवल 7 क्षेत्रों में सक्रिय थीं, जबकि ये आज 38 क्षेत्रों में सक्रिय हैं। महिला खेल प्रशिक्षकों की संख्या 9,000 से 35,000 तक पहुंच गई है, जो इस्लामी गणतंत्र के वास्तविक विकास का प्रतीक है। महिला रेफरियों की संख्या 2,000 गुना बढ़कर 7,000 से 16,000 हो गई है। क्रांति के बाद महिला स्टेडियमों की संख्या 30 गुना बढ़ गई है। क्रांति से पहले विदेशी प्रतियोगिताओं में ईरानी महिलाओं की उपस्थिति केवल 6 बार थी, जो बढ़कर 12,000 तक हो गई। 1978 तक महिलाओं ने केवल 5 विश्व पदक जीते थे, जिनकी संख्या इस्लामी क्रांति के बाद के 40 वर्षों में 160 तक पहुंच गई है। 1979 में ईरान में केवल एक महिला खेल फेडरेशन थी, जिसकी संख्या आज 540 तक पहुंच गई है।
स्वास्थ्य क्षेत्र में महिलाओं ने अभूतपूर्व प्रगति की है। महिलाओं की जीवन प्रत्याशा 1976 में 54 वर्ष से बढ़कर 2018 में 78 वर्ष हो गई है। वैश्विक आंकड़ों के अनुसार इस्लामी क्रांति से पहले की तुलना में प्रसव के दौरान मृत्यु दर में 90% की कमी आई है। महिला डॉक्टरों की संख्या 1976 में 3,500 थी, जो अब 16 गुना बढ़कर 60,000 हो गई है। 1976 की तुलना में महिला चिकित्सा विशेषज्ञों की संख्या 50 गुना बढ़कर 597 से 30,000 हो गई है। इस्लामिक क्रांति के बाद से अब तक विशेष रूप से महिलाओं को चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए 5,300 चिकित्सकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। थोपे गए युद्ध के दौरान 23,000 ईरानी सहायता कर्मियों और 2,300 महिला डॉक्टरों ने सक्रिय रूप से भाग लिया, जो महिलाओं के प्रतिरोध को दर्शाता है।
इस्लामिक क्रांति की सफलता के बाद महिलाओं ने सांस्कृतिक, शैक्षिक और यहाँ तक के अनुसंधान क्षेत्र में कई संस्थानों और गैर सरकारी संगठन स्थापित किए हैं, जिनकी संख्या अब हजारों में है। 2019 के आंकड़ों के मुताबिक ईरान के अलग अलग प्रांतों में महिला मामलों से जुड़े 2,700 से अधिक संगठन सक्रिय हैं। क्रांति से पहले महिलाओं के लिए कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों की संख्या सिर्फ 5 थी, जो आज 2,000 से अधिक है। दुनिया का सबसे बड़ा महिला गैर सरकारी संगठन, जिसमें 9 मिलियन सदस्य हैं, ईरानी महिला बसीज संगठन है।
ईरान के इस्लामी क्रांति की सफलता के बाद ईरानी महिलाओं की प्रतिभाएं उभर कर सामने आईं और समाज उससे लाभान्वित हुआ। अनुवाद, संकलन, प्रिंटिंग, संपादन, प्रूफ रीडिंग, सुलेख, फोटोग्राफी और प्रकाशन जैसे क्षेत्र में महिलाओं की सफलता को देखा जा सकता है। महिला लेखकों की संख्या 1978 में 50 से कम थी, जो अब बढ़कर 8,000 तक पहुंच गई है। महिला कहानीकारों की संख्या जो उंगलियों पर गिनी जा सकती थी अब 4000 से भी ज्यादा हो गई है। इस्लामिक क्रांति से पहले कोई महिला प्रकाशक नहीं थी, परंतु आज ईरान में 712 महिला प्रकाशक हैं। एक ऐसा क्षेत्र जिसमें क्रांति से पहले महिलाओं की भूमिका को इस्लामिक क्रांति की बाद की वर्षों की तुलना नहीं की जा सकती, वो है सिनेमा।
इस्लामिक क्रांति से पहले ईरानी सिनेमा उद्योग में पश्चिमी संस्कृति का अनुसरण करते हुए अश्लीलता की भरमार थी। इस्लामिक क्रांति से पहले ईरान में अश्लीलता और अनैतिकता की संस्कृति का प्रचार इस हद तक किया गया था कि इसकी तुलना हॉलीवुड सिनेमा से की जाती थी। लेकिन इस्लामिक क्रांति के बाद स्थिति में पूर्ण रूप से बदला हुआ। क्रांति के बाद फिल्म उद्योग में महिलाओं की भूमिका में मूल रूप से परिवर्तन हो गया। हालांकि कुछ कट्टरपंथी लोगों ने फिल्म उद्योग को ही बंद करने का प्रयास किया, लेकिन क्रांति के संस्थापक इमाम खुमैनी ने इसकी अनुमति नहीं दी।
1980 के दशक के मध्य से निर्देशक के रूप में पर्दे के पीछे महिलाओं की उपस्थिति गंभीर हो गई। क्रांति के बाद पुरान दरख्शंदे पहली प्रमुख निर्देशक हैं, जिन्होंने 1986 में फिल्म राब्ते बनाई। 1987 में रखशान बनी एतमाद ने खारिज अज महदूद फिल्म बनाई। इस पीढ़ी के एक अन्य महत्वपूर्ण निर्देशक मर्जिए बुरुमंद हैं, जिन्होंने मोहम्मद अली तालिबी के सहयोग से शहरे मूशा नामक बच्चों के लिए फिल्म बनाई। शहरे मूशा के बाद बुरुमंद का टीवी से सिनेमा की ओर पलायन सफल रहा। तहमीने मिलानी ने अपनी पहली फिल्म बच्चाए तलाक के साथ फिल्म उद्योग में कदम रखा और भविष्य में एक अच्छी फिल्म निर्माता के रूप में भी अपनी पहचान बनाई।
फिल्म उद्योग में ईरानी महिलाओं की उपस्थिति की अगर फ्रांस जैसे देशों से तुलना की जाए तो वहां आज भी 5 महिला फिल्म निर्माता नहीं हैं, जिनकी फिल्में हालिया दशकों में रिलीज हुई हों। 1980 के दशक में ईरानी महिला फिल्म निर्माताओं की पहली पीढ़ी की फिल्मों में अक्सर सामाजिक मुद्दों को उठाया जाता था। टेलीविजन और उससे जुड़ी विभिन्न गतिविधियां ईरानी महिला फिल्म निर्माताओं की इस प्रारंभिक पीढ़ी की एक अन्य विशेषताएं होती हैं। 2000 के दशक में ईरानी महिला फिल्म निर्माताओं की संख्या इतनी बढ़ गई कि पलड़ा महिला फिल्म निर्माताओं के पक्ष में झुक गया। 2000 के दशक के उत्तरार्धार्थ में 800 से अधिक महिला फिल्म निर्माताओं ने परवीन एहतसामी महोत्सव में भाग लेने के लिए पंजीकरण कराया। हालांकि संख्या में वृत्तचित्र, लघु या एनिमेशन के क्षेत्र की महिला फिल्म निर्माता भी शामिल हैं। यहां ये कहा जा सकता है कि इस्लामिक क्रांति के बाद 30 वर्षों में ईरानी महिला फिल्म निर्माताओं की संख्या विश्व सिनेमा के पूरे इतिहास में महिला फिल्म निर्माताओं की कुल संख्या से अधिक हो गई है।
2000 के दशक में सिनेमा के अन्य क्षेत्रों जैसे कि स्क्रिप्ट राइटिंग, एडिटिंग और प्रोडक्शन में महिलाओं की उपस्थिति बहुत अहम हो गई। क्रांतिकारी माहौल में ईरानी अभिनेत्रियों को शांति और सुरक्षित माहौल मिला, जो इसके पहले नहीं था। पूर्व क्रांतिकारी सिनेमा में महिलाओं को केवल एक उपकरण के रूप में फिल्मों में पेश किया जाता था और उनके लिए किसी भी तरह से सुरक्षित माहौल नहीं था। लेकिन क्रांति के बाद अभिनेत्रियों को अपनी प्रतिभा निखारने का पूरा मौका मिला और उन्हें पूरा सम्मान दिया गया। हालांकि ये बात भी सही है कि ईरानी महिला सिनेमा अपने पूरे इतिहास में समस्याओं और आलोचनाओं से परे नहीं रहा। कई फिल्में रचनात्मक और सामग्री की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण रहीं, लेकिन इन कमियों का औसत ईरानी पुरुष सिनेमा में मौजूद औसत से अधिक नहीं है। सामान्य तौर पर कहा जा सकता है कि पुरुष या महिला फिल्म निर्माता होना अब ईरानी सिनेमा के लिए एक सामान्य सी बात है।
तो दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है, अनुमति दीजिए।
ये
यह तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। श्रोतो अब प्रस्तुत है हमारी सभा का अंतिम कार्यक्रम ईरान भ्रमण।
ईरान भ्रमण।
दोस्तों, कार्यक्रम ईरान भ्रमण की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं मरियम मेहरदादी और अहमद अब्बास का सलाम स्वीकार कीजिए।
दोस्तों, पिछले कार्यक्रम में हमने आपको बताया था कि पवित्र नगर कुम में हजरत मासूमा का रोजा है। इसी वजह से न केवल ईरान के विभिन्न नगरों से बल्कि विश्व के अनेक देशों से लोग यहाँ पर ज्यारत के लिए आते हैं। आज हम कुम के कुछ अन्य आकर्षणों के बारे में चर्चा करेंगे। पवित्र नगर कुम में एक अति प्राचीन बाजार है जिसको ईरानी वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना माना जाता है। ये प्राचीन बाजार नगर के प्राचीन क्षेत्र में स्थित है। इस बाजार की एक विशेषता यह है कि इस पर छत बनी हुई है।
इसको बनाने में ईरान की पारंपरिक वास्तुकला को पूरी तरह से दृष्टिगत रखा गया है, क्योंकि कुम नगर मरुस्थलीय क्षेत्र में स्थित है। ऐसे में यहाँ के बाजार के निर्माण में इन सारी बातों को ध्यान में रखा गया है। कुम के इस प्राचीन बाजार की एक विशेषता यह है कि इसको एक बार में न बनाकर कई बार में बनाया गया है। इस बाजार के एक हिस्से को पहले बनाया गया, फिर उसके बाद सलजुकी, ईलखानी, सफवी, काजार और पहलवी कालों में इसके अलग अलग हिस्से बनाए गए।
इसकी एक विशेषता यह है कि कुम के प्राचीन बाजार को ईरान की राष्ट्रीय धरोहरों की सूची में पहले ही पंजीकृत किया जा चुका है। इसकी प्राचीनता तथा निर्माण शैली के कारण बहुत से लोग इसको देखने आते हैं। इस बाजार में विभिन्न दुकानों के अतिरिक्त कुछ मस्जिदें भी बनी हुई हैं, जैसे मस्जिद मुल्ला जाफर, मस्जिद इमाम हसन, मस्जिद रजविये, मस्जिद तुज्जार और मस्जिद कोहन आदि। कुम के प्राचीन बाजार की एक विशेषता ये भी है कि वहां से हमेशा खुशबू आती रहती है। इस प्राचीन बाजार में एक पारंपरिक हमाम या स्नान गृह भी मौजूद है।
बाजार के प्रवेश द्वार पर पत्थर का एक शिलालेख दिखाई देता है। इस शिलालेख के हिसाब से हमाम के निर्माण की तारीख 1216 हिजरी गमरी है। इस हिसाब से हमाम को फतेह अली शाह काजार के काल में बनवाया गया था। हमाम में दाखिल होने के लिए एक आयताकार रास्ता बना हुआ है। इस हमाम में एक अष्टकोणीय गुंबद बना हुआ है। ये 10 मीटर का है, जिसके भीतर 4 स्तंभ दिखाई देते हैं। इसकी इमारत के अंतिम छोर पर पानी की एक बहुत बड़ी टंकी बनी हुई है। गुंबद के नीचे वाले हिस्से को कपड़े धोने के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि दूसरे हिस्से को अब भी नहाने के लिए ही इस्तेमाल करते हैं।
कुम के प्राचीन बाजार के निकट एक मशहूर इमारत है जिसको यजदान पनाह के नाम से जाना जाता है। इस इमारत को काजारी काल से संबंधित बताया जाता है। इसका प्रवेश द्वार बहुत ही सुंदर और आकर्षक है। इसको ईंटों से बनाया गया है। रोचक बात यह है कि पूरी इमारत का निर्माण मिट्टी और भूसे के मिश्रण से किया गया है, किंतु वर्षों बाद अब तक ये बाकी है। इसकी एक विशेषता यह है कि इसमें 5 द्वार बने हुए हैं। इस इमारत की प्राचीनता और निर्माण शैली को देखते हुए इस समय इसको एक रेस्टोरेंट में परिवर्तित कर दिया गया है। जब कोई इस इमारत में बैठकर खाने का आनंद लेता है तो उसको ऐसा लगता है जैसे वो विगत के दौर में पहुंच गया है। इसकी इसी विशेषता के कारण बहुत से लोग रेस्टोरेंट को प्रयोग करते हैं।
कहा यह जाता है कि वे क्षेत्र जो हरे भरे होते हैं उनमें विशेष प्रकार का आकर्षण पाया जाता है। वहां की हरियाली के कारण लोग उसकी ओर खींचे चले जाते हैं। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जो हरियाली के न होने के बावजूद अपने भीतर आकर्षण रखते हैं, जैसे मरुस्थलों में बसे हुए क्षेत्र। ये जाफरिया नामक क्षेत्र में पाई जाती है। इसको गुम के प्राकृतिक आकर्षणों में गिना जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये लाखों साल पुरानी झील है। वास्तव में यहाँ पर नमक का एक बहुत ऊंचा टीला या पहाड़ है, जिसको गुम्बदे नमक की तगरूत कहा जाता है।
गुम्बदे नमकीय तगरूद अपने प्रकार का एक अद्वितीय क्षरीय टीला है। इसके चारों ओर एक झील है। इस झील को स्थानीय लोग दरियाचे नमक कहते हैं। इस शुष्क क्षेत्र में जब कभी भी वर्षा होती है तो वहां पर पड़ने वाली गर्मी के कारण नमक का पानी भाप बनकर इस नमक के टीले से मिल जाता है, जिसके कारण विभिन्न आकार के दृश्य दिखाई देते हैं। यहाँ पर पाए जाने वाले नमक का रंग केवल सफेद न होकर कई रंगों का है, जैसे लाल, चॉकलेटी और बैगनी आदि। इनकी एक विशेषता यह है कि जो भी इनको देखता है वो देखता ही रह जाता है। पहली नज़र में तो समझ में ही नहीं आता कि ये नमक है या कुछ और। हालांकि हरे भरे क्षेत्रों में ऊंचे पर्वतों और बर्फ से छिपे पहाड़ों का किसी मरुस्थल के निकट स्थित होना बड़ी विचित्र बात है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में कभी कभी ऐसे प्राकृतिक सौंदर्य देखने को मिल जाते हैं जो किसी दूसरे स्थान पर दिखाई नहीं देते। ये क्षेत्र जहां पर चारों ओर नमक ही नमक हो, वहां पर सुनहरे रंग का टीला निश्चित रूप से हर देखने वाले को आश्चर्य में डाल देता है। कुम नगर का नमक का पहाड़ कुम राजमार्ग से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
दोस्तों, इस बात को हम पहले भी बता चुके हैं कि कुम ईरान का एक अति प्राचीन क्षेत्र है। इस प्रांत में 317 से अधिक ऐतिहासिक एवं धार्मिक धरोहरों को पंजीकृत किया जा चुका है। इसलिए कुम धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से भी अब पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका है। लेकिन विशेष बात यह है कि कुम में मौजूद मासूमा कुम का रोज़ा यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक एवं ऐतिहासिक इमारत है। इसके दर्शन के लिए संसार के विभिन्न हिस्सों से श्रद्धालु आते रहते हैं। हालांकि मासूम कुम के अतिरिक्त भी गुम में कई धार्मिक एवं ऐतिहासिक धरोहरें हैं, किंतु वहां पर सबसे अधिक ख्याति मासूमा के रोजे को ही हासिल है। गुम में जो ऐतिहासिक प्रमाण पाए जाते हैं उनके आधार पर इसकी आधारशिला ईसा पूर्व काल में रखी गई थी।
हजरत मासूमा का रोजा अपनी सभी इमारतों के साथ एक नदी के किनारे पर स्थित है। इसका नाम है कुमरूद। हालांकि वर्तमान समय में ये नदी ऐसी है जिसमें पानी लगभग समाप्त हो चुका है। हजरत मासूमा का रोजा इस नदी के पूर्वी छोर पर स्थित है। रोजे की इमारत और इसके बरामदे, प्रांगण, मस्जिद, संग्रहालय एवं अन्य इमारतें 14,000 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल पर फैले हुए हैं। रोजे का सुनहरा गुम्बद वो पहला मनमोहक आकर्षण है जो रोजे के दर्शनार्थियों को अपनी ओर खींचता है। ये गुम्बद 16 मीटर ऊंचा है। इसका निर्माण 13वीं हिजरी शताब्दी में सुनहरे रंग की ईंटों से किया गया। गुम्बद पर सोने के पानी चढ़ाने का काम उस्ताद महमूद मेमार कुम्मे ने किया था। ये रोजा लगातार विस्तार की प्रक्रिया से गुजर रहा है।
हजरत मासूमा की पवित्र कब्र इस सुनहरे गुंबद के नीचे है, जिसके चारों ओर एक बड़ी सुंदर जरी बनी हुई है। चांदी की इस जरी को सुनहरे रंग की टाइलों से सुसज्जित किया गया है। गुंबद के नीचे स्थित जरी के किनारों को दो भागों में बांटकर इनको महिलाओं और पुरुषों से अलग अलग विशेष किया गया है। यहाँ पर हर समय लोगों की भीड़ देखने को मिलती है। इस्फहान के कारीगरों के दक्ष हाथों से बनी जरी ने रोजे की शोभा बढ़ा दी है।
इस जरी के ऊपर की छत को 19वीं शताब्दी में आयनाकारी मुकर्नस कला से सजाया गया। रोजे के भीतर झाड़ फानूस के नीचे शीशों की चमक हर देखने वाले को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसी रोजे की जमीन पर बिछे हाथ के बुने कारीन बड़े सुंदर दिखाई देते हैं और आध्यात्मिक आकर्षण पैदा करते हैं। हम आशा करते हैं कि जब कभी आपका ईरान आना हो तो आप यहाँ के प्राकृतिक एवं धार्मिक आकर्षणों को निकट से देख सकें। दोस्तों, इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे साप्ताहिक कार्यक्रम ईरान भ्रमण और अब समय मुख्य समाचारों के सारांश का। ईरान के राष्ट्रपति का कहना है कि अतीत में दुश्मन हमारे प्राकृतिक भंडारों को लूट मार करता था, जबकि आज आइडेंटिटी, इलेक्ट्रॉनिक, साइबर और सॉफ्टवेयर वार में हमारे बेहतरीन, योग्य और सक्षम लोगों को दूसरे देशों में ले जाना चाहता है। ईरानी सेना के एयरस्पेस फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अली रजा सबाही फर्द ने कहा है कि ड्रोन अभ्यास ने सफलतापूर्वक ऐसे ऑपरेशन पूरे कर लिए हैं जो दुनिया में अभूतपूर्व हैं। एक अमेरिकी थिंक टैंक ने कहा है कि परमाणु समझौते को जीवित करने के मार्ग की असली रुकावट ईरान नहीं बल्कि अमेरिका है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति ने कहा है कि यूक्रेन पर हमला जारी रहेगा। चीनी प्रतिरक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि ताइवान संकट का जनक अमेरिका है और अपनी भड़काऊ कार्रवाइयों से उसने चीन को क्रोधित कर दिया है। संयुक्त अरब इमारात यमन के सख्तरी क्षेत्र में इस देश की महिलाओं और लड़कियों की भर्ती कर रहा है और अबू धाबी में उनका प्रशिक्षण इसराइली अफसर सहित विभिन्न अफसर कर रहे हैं। तो श्रोताओं, हमारा ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। हमारा ये कार्यक्रम आपने 60वें में 25 मीटर बैंड बराबर 11,860 किलोहर्ट्ज पर सुना। ताज़ा समाचारों से अवगत होने के लिए हमारी वेबसाइट देखना ना भूलें, पता है parstoday.com/hi। तो श्रोताओं, आपसे विदा चाहते हैं। खुदा हाफिज, शुभरात्रि। Oh,